लूका बाब 11। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि यीशु एक जगह दुआ कर रहे थे, और जब वो दुआ खत्म किए तो उनके शागिर्दों में से एक ने कहा,
अय खुदावंद, यूहन्ना अपने शागिर्दों को दुआ करने का तरीका सिखाया है, बराए मेहरबानी दुआ करने का तरीका हमें भी सिखा दे।
यीशु ने उनसे कहा,
तुम इस तरह दुआ करो और कहो, ऐ बाप, तेरा नाम हमेशा मुकद्दस है, और हम दुआ करते हैं कि तेरी बादशाहत आए, हमें रोज की रोटी रोज अता कर, हमारे गुनाहों को माफ कर जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, और हमें आजमाइशों में न डाल।
तब यीशु ने उनसे कहा, यूं समझो,
तुम में से एक आदमी है कि जो अपने दोस्त के घर को रात में बहुत ताखिर से गया। वो अपने दोस्त से कहता है, मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए बहुत दूर से मेरे पास आया है, लेकिन उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेहरबानी से मुझे 3 रोटियां दे। वो दोस्त घर के अंदर से जवाब देता है, निकल जा और मुझे तकलीफ न दे, और दरवाजा बंद है, मैं और मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं अब उठकर तुझे रोटी नहीं दे सकता। सिर्फ उसकी दोस्ती ही उसको नहीं उठा सकती और न रोटी दे सकती है, लेकिन अगर वो मुसलसल पूछता ही रहे तो वो उठकर अपने दोस्त को यकीनन उसके मुतालबा के मुताबिक रोटी देगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो जरूर तुम्हें मिलेगा, तलाश करो और तुम पाओगे, खटखटाओ तब तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा। हाँ, जो मुसलसल मांगता है पाएगा, अगर एक आदमी तलाश करता रहे तो पाएगा, जो खटखटाता है तो आखिरकार उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। तुम में कितने रोग हैं कि जो बाप बने हैं, अगर तुम्हारा कोई बच्चा तुमसे मछली मांगे तो क्या तुम उसको सांप दोगे? हरगिज नहीं, बल्कि तुम मछली ही दोगे। अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे अंडा पूछे तो क्या तुम उसको बिच्छू दोगे? हरगिज नहीं। अगर तुम दूसरे लोगों की तरह खराब और बुरे हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे बच्चों को किस तरह अच्छी और उम्दा चीजें देना है, ठीक इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप भी मांगने वालों को रूहुल कुदुस जरूर देता है।
एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक गूंगी बदरू से एक आदमी पर हुए बद असरात को यीशु छुड़ा रहे थे। वो बदरू जब उस आदमी से बाहर आ गई तो वो आदमी बातें करने लगा। लोग देखकर हैरान हो गए, लेकिन चंद लोगों ने कहा,
बदरूहों से मुतासिर लोगों को ये बलज़बूल की क़ुव्वत से छुड़ाता है, और बलज़बूल बदरूहों का हुक्म है।
कुछ लोगों ने यीशु को आजमाने के लिए कहा कि खुदा की तरफ से कोई निशानी आसमान से दिखाओ, लेकिन उनके ख्यालात को जान लेने वाले यीशु ने उनसे कहा,
हर बादशाहत तकसीम हो जाए और आपस में लड़ती रहे तो वो हुकूमत तबाह व बर्बाद हो जाती है। जो खानदान में तकसीम हो जाए और आपस में झगड़े हों तो वो टूट जाती है। इसी तरह अगर शैतान भी अपने खिलाफ लड़ाई करे तो ऐसी सूरत में उसकी बादशाहत कैसे आगे बढ़ सकती है? तुम कहते हो कि मैं बदरूहों का बाल जबोल की ताकत से बदरूहों को छुटकारा दिलाता हूँ। अगर मैं बाल जबोल की ताकत से बदरूहों को छुड़ाता हूँ तो ऐसी सूरत में तुम्हारे लोग बदरूहों को किस कुव्वत से छुड़ाते हैं? इसी वजह से तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें गलत साबित करते हैं। लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की ताकत से निकालता हूँ तो ये गवाही होगी कि खुदा की बादशाहत तुम्हारे पास आई है। एक ताकतवर मुख्तलिफ किस्म के हथियारों के जरिए मुसल्ले होकर अगर वो अपने घर की हिफाजत करता है तो घर की चीजें महफूज रहती हैं। लेकिन उससे बढ़कर ताकत वाला अगर कोई और दूसरा आ जाए और उसको वो शिकस्त दे, पहला ताकतवर अपने घर को महफूज रखने के लिए वो हथियार जिन पर वो मुनहसिर था उनको दूसरा ही कुव्वत वाला उठा ले जाएगा। तब दूसरा ताकतवर उस आदमी के सामान को मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। जो मेरे साथ नहीं तो वह मेरे खिलाफ है, मेरे पास जमा न करने वाला मुंतशिर करने वाला होता है। जब एक बदरू किसी आदमी से निकल आती है तो वो सूखी जगह में घूमती है और आराम के लिए जगह तलाश करती है, लेकिन उसे आराम करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। इस वजह से रूह कहती है, मैं जो जगह छोड़ आई हूँ उसी जगह में वापस चली जाऊंगी। जब वो रूह उस घर को लौट कर आने के बाद उस घर को बहुत साफ सजा हुआ पाती है, तब वो बदरूह जाकर खुद से और ज्यादा खराब 7 बदरूहों को साथ लेकर आती है और वो तमाम बदरूह हैं उस आदमी में दाखिल होकर उसमें जगह बना लेती हैं। तब वो आदमी की हालत पहले के मुकाबले में और ज्यादा खराब हो जाती है।
जब यीशु ने इन वाकयात को कहा तो वहाँ के लोगों में से एक औरत ने बुलंद आवाज से यीशु से कहा,
तुझे पैदा करके और तेरी परवरिश करने वाली तेरी माँ ही फजल वाली होगी।
लेकिन यीशु ने कहा,
लोग जिन्होंने खुदा की तालीमात सुनकर उसके फरमाबरदार होने वाले लोग ही खुशी से मामूर होंगे।
जैसे जैसे मजमा बढ़ता गया यीशु ने उनसे कहा,
यह नस्ल हकीकत में एक बुरी नस्ल है। वो ये मोजज़ा को देखना चाहती है, लेकिन यूनुस की जिंदगी में देखे गए मोजज़े के सिवा उसको दूसरी निशानी नहीं मिलती। नैनवा के रहने वाले लोगों में यूनुस एक निशान के तौर पे था, ठीक इसी तरह मौजूदा नस्ल के लिए इब्न आदम एक निशान के तौर पर है। कयामत के दिन जनूबी मुल्क की मलका इस नस्ल के साथ उठ खड़ी होगी और वो साबित करेगी कि ये कसूरवार हैं, क्योंकि वह मलिका बहुत दूर से सुलेमान की तालीमात की बातें सुनने के लिए यहाँ आई थी। ऐसे में मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं सुलेमान से ज्यादा अजीम हूँ। फैसले कयामत के दिन नैनवा शहर के लोग इस नस्ल के लोगों के मुकाबिल खड़े होकर ये साबित करेंगे कि वो कसूरवार हैं, क्योंकि उन्होंने यूनुस की तबलीग को सुनकर अपने गुनाहों से तायब हुए। लेकिन मैं नबी यूनुस से भी ज्यादा अजीम हूँ। चिराग को सुलगाकर किसी बर्तन के अंदर या किसी और जगह पर छिपा कर रखा नहीं जाता। बाहर आने वालों को रोशनी नजर आने के लिए लोग चिराग को शमादान पर रखते हैं। तेरी आंख बदन के लिए रोशनी है, अगर तेरी आंख अच्छी हो तो तेरा सारा बदन भी रोशन होगा, अगर तेरी आंखें खराब हों तो तेरा बदन भी अंधेरे में होगा। इसलिए होशियार रह कि तेरे अंदर की रोशनी अंधेरे में तब्दील न हो जाए।
और कहा कि
अगर तेरा पूरा जिस्म रोशनी से भर जाए और कोई हिस्सा तारीक न रहे तो तू भरपूर रोशनी के मानिंद होगा, जैसे चिराग की शुआएं तुझे चमका रही हों।
जब यीशु ने अपनी तकरीर को खत्म की तो एक फरीसी ने यीशु को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया, इसलिए यीशु उसके घर जाकर खाना खाने बैठ गए। उसने यीशु को देखा कि वो अपने हाथ धोए बगैर ही खाना खाने बैठ गए तो फरीसी को ताज्जुब हुआ। खुदावन ने उससे जो कहा वो ये है कि
तुम फरीसियो, तुम तो बर्तन और कटोरे के ऊपर के हिस्सा को तो साफ सुथरा रखते हो, जबकि तुम्हारा बातिन लालच और बुराइयों से भरा हुआ है। तुम बेवकूफ इसलिए कि जिस खुदा ने तुम्हारे जाहिर को बनाया है वही बातिन को भी बनाया है, इसलिए बर्तन और कटोरे के अंदर की चीजें गरीबों को दिया करो, तब कहीं तुम पूरी तरह पाक हो जाओगे। ऐ फरीसियों, अफसोस है तुम पर, क्योंकि अपने पास की तमाम चीजों में से 10वां हिस्सा खुदा की राह में देते हो। तुम्हारे बाग की पैदावार में पुदीना सादात जैसे छोटे पौधों वाली फसल में से भी देते हो, लेकिन दूसरों को इंसाफ बताने के लिए और खुदा से मोहब्बत करना भुला बैठे हो। पहले तुम्हें उन तमाम बातों को करना है और बची हुई चीजों को नजरअंदाज करना है। हे फरीसियों, तुम पर बड़ा ही अफसोस है कि तुम यहूदी इबादतगाहों में तो आला वो ऊंची नशिस्तों के और बाजारों में लोगों से इज्जत के ख्वाहिशमंद होते हो। अफसोस है तुम पर कि तुम तो बस उन पोशीदा कब्रों की तरह हो जिस पर से लोग बगैर समझे उन पर से गुजरते हैं।
किसी शरीयत के मुअल्लिमीन ने यीशु से कहा,
ऐ उस्ताद, जब तुम ये चीजें फरीसी के मुतालिक कहते हो तो हम पर तनकीद भी करते हो।
इस पर यीशु ने जवाब दिया,
ऐ मुअल्लिमीन शरीयत, तुम पर अफसोस है, लोगों के लिए ऐसे अहकामात को लाजिम करते हो कि जिस पर अमल करना मुश्किल है, और उन अहकामात की बजा आवरी के लिए तुम दूसरों पर जुल्म करते हो, लेकिन उन अहकामात पर अमल करने की तुम कोशिश भी नहीं करते। तुम पर अफसोस है, تم نبیوں کی قبریں تو بناتے ہو لیکن ان نبیوں کے قاتل تو تمہارے باپ دادا ہی تھے، اسی طرح تم اپنے باپ داداؤں سے کیے گئے فعل کا اعتراف کرتے ہو، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور اب تم ان نبیوں کی قبریں تعمیر کر رہے ہو۔ اس لیے خدا کی حکمت یہ کہتی ہے کہ میں ان کے پاس نبیوں اور رسولوں کو بھیجوں گا، میرے چند نبی اور رسول ان لوگوں کے ذریعے قتل ہوں گے اور دوسروں کو برا بھلا کہیں گے۔ اس وجہ سے دنیا کی ابتدا ہی سے قتل کیے گئے تمام نبیوں کے موت کے لیے اس زمانے کے لوگوں کو سزا ملے گی۔ حابل اور زکریہ کے قتل کی تمہیں سزا ملے گی۔ زکریہ کو قربانگاہ اور ہیکل کے درمیان میں قتل کر دیا گیا تھا، ہاں میں تم سے کہتا ہوں ان سب کے مار ڈالنے کے لیے اب جو زندہ ہیں ان کو سزا ملے گی۔ اے معلمین شریعت، تم پر افسوس ہے، تم نے خدا کی معرفت کی کنجی کو چھپائے رکھا، تم کو سیکھنے کی خواہش نہ تھی، دوسروں کے سیکھنے کے راستے میں رکاوٹ بنے۔
یسوع جب وہاں سے نکلا تو معلمین شریعت اور فریسیوں نے اسے اور زیادہ تکلیف دینا شروع کیا، وہ اس سے مختلف سوالات پوچھتے ہوئے جرح کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ کو کسی غلطی پر اسے پھانس لیں۔